ओम शांति। गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार बोलेंगे प्यार से स्माइल के साथ, ओम शांति। वेरी गुड। अभी का विषय बहुत ही सुंदर है, नर्चरिंग योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। हम अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को कैसे नर्चर करें, और इस विषय पर प्रकाश देने के लिए हमारे बीच में है परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी। हम सभी आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा टॉपिक है, विषय बहुत सुंदर है, और उस विषय की धारणा भी आपके जीवन के अंदर है। वो अमृत वेले से ही, अभी आप लोग सभी अमृत वेला करते हो ना, यहाँ पर कौन आए थे आज सवेरे 4 बजे यहाँ पर? वेरी गुड, अच्छा लगता है। तो दीदी जी भी सवेरे 3 बजे रोज उठते हैं, और 3 बजे से उनकी साधना शुरू होती है, और 3 से 8 का समय उनका मैक्सिमम अपनी आध्यात्मिक जीवन को सस्टेन करने में बहुत बिजी रहते हैं, और फिर पूरा दिन जो सस्टेन किया है अपने अंदर वो दूसरों को बांटते हैं पूरे दिन में। तो जो हम सवेरे का समय, जो मॉर्निंग का समय अपने लिए निकालते हैं, वो एक पावरफुल समय है। उस समय को कहा गया है, साइंस ने प्रूव किया है कि 4 से 4:45 का समय वो संकल्प सिद्धि का समय है। कौन सा समय है? संकल्प सिद्धि का समय। उस समय पर उठकर के हम जो भी संकल्प करते हैं वो संकल्प सारे ही सिद्ध होते हैं, और भगवान उस समय भोले भंडारी के रूप में है। ऑफिशियल रूप में नहीं है, लेकिन कौन से रूप में है? भोले भंडारी के रूप में। और आदरणीय दीदी जी को ये भगवान का वरदान है सवेरे उठ करके। मैं एक छोटी सी बात कह करके आपसे ही ये सारी नर्चरिंग की बातें हम सुनेंगे, लेकिन आप सवेरे जब 3 बजे उठते हैं तो उनकी जो 3 से 5 की दिनचर्या है, सिर्फ उतना ही सुनाती हूँ, पूरा नहीं सुनाती हूँ। लेकिन 3 से 5 में आप उठ करके अपने एक बैग रखते हैं जिसमें भगवान के साथ बातें करती उसकी डायरी होती है, फिर एक अमृत वेला, अपनी यहाँ एक किताब है, पूरी किताब ही अमृत वेले के ऊपर है, फिर बाप समान बनने वाली किताब, फिर शुभ भावना, गुण विशिष्ट शुभ भावना वाली किताब, ये 2-3 किताब अपनी वो थैली में रखते हैं। बाबा से जो बातें करते वो डायरी भी रखते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट डायरी भी उस थैली में रखते हैं। और आफ्टर अमृत वेला, जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं ना, वैसे आपको ये वरदान है, भगवान से डायरेक्ट बातें करते हैं, और भगवान जो उनको कहते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो डायरी में फिर लिखते हैं। तो जीवन के अंदर काफी लोगों के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, काफी ऐसी बातें होती है, तो दीदी से आकर पूछते हैं, तो दीदी हमेशा अमृत वेले बाबा से बात करती है, बाबा जो आंसर देते हैं वो आंसर फिर जिन्हों का क्वेश्चन होता है उनको देते हैं। ये उनको भगवान का वरदान कहो, ब्लेसिंग कहो, या उनकी खुद की साधना भी ऐसी है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भगवान के साथ एकदम क्लीन एंड क्लियर है, भगवान की बातों को एकदम क्लियरली टच कर पाते हैं। तो आज हम ये भी सुनेंगे कि आपने इन सारी कड़ाओं को, इन क्षमताओं को अपने जीवन के अंदर कैसे नर्चर करते, बढ़ाते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। तो आज का विषय बहुत सुंदर है, नर्चरिंग योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल, और इस विषय पर हमारी आदरणीय दीदी जी अभी हम सबके बीच में प्रकाश डालेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय है। उस विषय को हम जीवंत उदाहरण के साथ देखेंगे। जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंचाया और विश्व के आगे एक प्रत्यक्ष उदाहरण रूप बने। ऐसे ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने रखते हुए आज के विषय पर हम दृष्टि डालेंगे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो भगवान का माध्यम बना, तो उनके जीवन में वो क्या पुरुषार्थ था, क्या लगन थी जो स्वयं भगवान ने उनको अपना आधार इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो पिताश्री ब्रह्मा के बारे में आपको एक वीडियो दिखाने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पाया है, तो इसीलिए ये बहुत ही मूल्यवान विषय से हम आपको वंचित रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं बाबा के जीवन के पर पूर्ण प्रकाश डालूंगी, जिन्हें हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं। उनके लौकिक जीवन का नाम था दादा लेखराज। उनका बचपन का इतिहास कुछ ऐसा है कि बहुत सामान्य परिवार से थे। उनके पिताजी एक शिक्षक थे। परंतु लेखराज जी की बहुत छोटी उम्र थी, 14 साल की उम्र थी, और पिताजी बीमार हुए और बीमारी में पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। अब वो घर में बड़े थे तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके काम पर लग गए। अब पहले तो उनके चाचा ने अपनी रेशन की दुकान पर बिठाया उसको। वो दयालु स्वभाव का था, माल लेने के लिए कोई आते थे, अगर किसी के पास पूरे पैसे नहीं होते थे तो थोड़ा कम ले लेते थे या कह देते थे कोई बात नहीं, जब पैसे आवे तब दे देना, या कहते थे कोई बात नहीं, नहीं देना। तो उनके चाचा को मालूम चला कि ये तो लड़का दुकान कर बैठ कर कैसे काम करता है, मेरे धंधे को ही खत्म कर देगा। तो उनको अपने वहां से निकाल के एक जवहरी की दुकान पर बिठाया, उसके मित्र की दुकान पर बिठाया कि जहां पर उसको सुबह दुकान खोलनी है, झाड़ू लगाना है, पानी भरना है, ऐसे ऐसे काम करने का, और दिन भर में जो सेठ बतावे वो काम करने का। तो एक जवहरी की दुकान पर काम पर लग गए। अब वहां जवारी के दुकान पर काम करते करते उसका सेठ उनको और भी सिखाते गया। सीखते सीखते वो एक बहुत अच्छा कारीगर बन गया। हीरा घसना, हीरा परखना, और वो ईमानदार इतने थे कि हीरे की दुकान वाले के वहां झाड़ू लगावे तो किचड़े में भी क्या आएगा, किचड़े में भी क्या आएगा, हीरा ही आ सकता है ना, छोटे छोटे। अब वो छोटी छोटी जो खर्च होती थी उसको भी इकट्ठी करके वो अपने सेठ को देते थे कि ये है। तो उसके सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें उसमें उसको जो करना है वो करो। तो उसने उसके छोटे छोटे आइटम्स बनाना शुरू किया और वो आइटम बना करके सेठ को दिया। तो उसके सेठ ने कहा कि ठीक है, ये तेरे को जहां यूज करना है करो। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो अपने अंदर आत्मविश्वास आ गया कि मैं भी ये तो कर सकता हूं। तो उन्होंने एक दिन अपनी इच्छा व्यक्त की सेठ के आगे कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं हीरे का। तो बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा भले करो, तुम तुम्हें कुछ मदद की आवश्यकता हो तो मैं सहयोग करूंगा। अब यहां क्या किया लेखराज जी ने, अपनी कार्य करने की शक्ति को बढ़ाया, वो जीवन में नर्वस नहीं हुआ, नासीपास नहीं हुआ चाचा ने निकाल दिया तो भी, और आगे कुछ साहस करने का संकल्प किया। लाइफ में अपनी शक्तियों को पालन कैसे किया जाए, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन से देखना है। कभी भी पीछे हट नहीं करना है। फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। अब उनके जीवन के हर पहलू को हम देखेंगे तो घर में हीरे आने लगे, हीरों के गहने बनने लगे, घर में बच्चे होते थे तो वो भी हीरों के गहने को देख करके बड़े आकर्षित होते थे, पर बच्चे तो बच्चे ही होते। तो एक बार क्या हुआ, उनके गहने में से कुछ गहने मिले नहीं बाबा को, तो बाबा सोचने लगा कहां चला गया होगा, कहां चला गया होगा। तो घर में अपने बच्चों को क्या बोला मालूम है, देखो मेरे ये गहने गुम हो गए हैं, तो जो मेरे को ढूंढ के देंगे ना उनको मैं इनाम दूंगा। अब बच्चे तो इनोसेंस में उठा लेते हैं, बाबा को मालूम भी चल गया था कि उनकी बेटी ने वो गहने उठा लिए थे, जानते हुए उनको सामने से एक नहीं कहा कि तुमने छुपाया है ना, डांटा भी नहीं और भी युक्ति निकाली। और उसी युक्ति के बाद उसने कहा पिताजी पिताजी ये तो देखो मैंने आपके गहने ढूंढ करके दिए। ना स्वयं अपनी शक्तियों को कमजोर किया, लेकिन सामने वाले को भी इस प्रकार हैंडल किया जो उसको डाउन नहीं किया, उनको डांटा भी नहीं, उनको अपने सम्मान से नीचे नहीं होने दिया। ऐसे बाबा को दो बेटे थे और तीन या चार एग्जैक्ट मुझे भूल गया है लड़कियां थी, गृहस्थी थे। उन्होंने अपने जीवन में 13 गुरु किए, कितने 13 गुरु किए। उनको बस ईश्वर प्राप्ति की एक ही लगन थी और ईश्वर प्राप्ति की लगन में वो गुरु करते गए। तो उनके 11वें नंबर के गुरु की ये बात है, उनको एक गुरु से प्राप्ति हो गई, फिर लगा कि बस इनके पास इतनी है तो दूसरा तीसरा ऐसे करते गए। 11वें नंबर के गुरु के तरफ से उनको पत्र आया, टेलीग्राम आया, लखीराज बाबू कम सुन। अब उस दिन जिस दिन उनको सुबह सुबह टेलीग्राम मिलता है उसी दिन अपने बेटे के पोते की, बेटे के बेटे की पोते की छठी थी, घर में बहुत बड़ा प्रसंग था, 2-3 हजार लोग आने वाले थे शाम के टाइम पर। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि गुरु का तार आया है और गुरु जी बुला रहे हैं, मेरी गाड़ी तैयार करो मुझे जाना है। तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि आज का शाम का ये प्रसंग पूरा करके फिर आप चले जाना, अब ध्यान से सुनना है। लेखराज जी दादा ने क्या जवाब दिया, जशोदा अगर काल का बुलावा आवे, मौत का बुलावा आवे, तो क्या तुम मुझे ये कह सकती हो कल जाना? गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, मैं अभी जाऊंगा, और करके वो गुरु के पास जाने के लिए रवाना हो गए। गुरु के पास पहुंचे, गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और गुरु जी से पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो गुरु जी का एक दूसरा शिष्य था, वो सट्टे में हार गया था, उनको 10,000 रुपए की जरूरत थी। तो गुरु ने बताया कि इनको ये सहयोग की आवश्यकता है, उसी समय पैसे निकाल करके दे दिए और गुरु को प्रणाम करके चल पड़े। लेकिन रास्ते में उनके मन के अंदर चिंतन चलता रहा, गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश, गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश। तो उन्होंने मनोमन उस गुरु को भी छोड़ दिया। फिर दूसरा गुरु भी किया। अब वो जो दूसरा गुरु किया था उसके साथ का ये अनुभव है कि अपने घर में सत्संग, उसके बाद का ये अनुभव, अपने घर में सत्संग आदि बिठाया था और थोड़ा मुझे रिकलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो गुरु का कुछ ऐसा अनुभव था, दादाजी को दिव्य साक्षात्कार हुए और वो दिव्य साक्षात्कार के अंदर उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था विष्णु चतुर्भुज और आवाज आया, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, माना मैं जो हूं वो तू है। दूसरा दृश्य देखा, आकाश से कोई तारे निकल रहे हैं, कोई महाराजा बनता, कोई महारानी बनती, कोई राजकुमार, कोई राजकुमारी बनती, और एक स्वर्ग सा दृश्य देखा। तीसरा साक्षात्कार हुआ एटमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कैलिमिटीज, आपसी खूनी नाहक खेल हो गया, और वो इतना भयानक दृश्य था जो दादा ने कहा प्रभु बस करो बस करो, अब ये मैं नहीं देख सकता हूं। और चौथा दृश्य देखा, एक ज्योति बिंदु, प्रकाश बिंदु, जिन्होंने आदेश किया कि तुम्हें माताओं बहनों के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाना है। तो ये जो 4 दिव्य साक्षात्कार हुआ, उसके बाद वो मंथन में पड़ गए कि अभी मुझे इसका रहस्य कौन खोल सकता है। तो गुरु के पास गए, फिर गुरु से पूछा कि मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति हुई है तो ये क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि लगता है लखीराज तुम पागल हो गए हो। अब जब गुरु से ऐसा जवाब मिला तो उन्होंने समझा कि ये कोई गुरु कृपा नहीं है, ये गुरु से भी ऊपर की कोई शक्ति है जिसने मुझ पर कृपा की है। तो कुछ समय के लिए मंथन में चले गए, और अपने आप से वो चिंतन करने लगे ये क्या हुआ है, और अपनी साधना के लिए परिवार से एक महीना दूर चले गए। फिर वापस आने के बाद अपने घर में एक बार सत्संग रखा था, और उसी सत्संग के अंदर स्वयं बैठे हुए थे, लेकिन सत्संग के बीच से ही वो अचानक उठ करके चले गए। तो उनकी पत्नी और पुत्र वधु भी उस सत्संग में बैठी थी, तो उनको हुआ कि दादा कभी बीच सत्संग से उठते नहीं हैं, आज उठ करके गए हैं, जरूर कुछ है। तो वो लोग भी सामने जाकर के बैठ गए, सामने जाकर के बैठे, पर ये जो दादा लेखराज थे उनकी आंखें बंद थी। और कुछ ही समय के बाद जब आंखें खुली तो आंखों से लाल तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था, पूरा कमरा लाल प्रकाश से भर गया था, और उनके मुख से आवाज निकला, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसा मुख से बोले। और फिर कुछ समय के बाद आंखें बंद हो गई, और जब फिर वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आए तो अपनी पत्नी पुत्र वधु को देखते हुए पूछने लगे कि ये क्या था, ये कौन थे, मुझे ये सब क्या हो रहा है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वो कुछ समय के चिंतन के बाद अपने अंदर में कुछ स्पष्टता होते होते अपने पार्टनर को बोले, सबसे पहले अपने परिवार वालों को बिठाया, पत्नी बच्चे पुत्र वधु बच्चियां दामाद सब को बिठाया, और कहा अपना वो दिव्य साक्षात्कार का सुनाया, और कहा कि मुझे परमात्मा का आदेश है, और ये भारत भूमि को स्वर्ग भूमि माताओं बहनों के द्वारा बनानी है, तो उस कार्य में आप मुझे सहयोग करेंगे। परिवार वालों ने बोला हाँ, तो बोला हम अपनी तमाम स्थावर जंगम मिलकत, तो वहां सिंध में ओम मंडली संस्था बहनों की चलती थी, वहां माताएं बहने इकट्ठी होकर के भक्ति भावना शास्त्र पढ़ना आदि करते थे, उसमें उनकी पत्नी और पुत्र वधु भी जाया करते थे। तो बोला हम ओम मंडली को अपना सब कुछ अर्पण कर दे, और हम भी सभी अर्पण हो जाए, और भारत भूमि को देवभूमि बनाने की सेवा करें। तो उसमें भी उन्होंने हाँ किया। तो उस जमाने में बाबा के 5-6 बंगलोस थे, 5-6 गाड़ियां थी, उस जमाने के लाखों पति थे, काफी जमीन आदि था। तो जब परिवार वाले एग्री हुए तो अपने बिजनेस पार्टनर को बोला कि मेरे हिस्से में जो भी आता है मुझे दे दिया जाए, अब मुझे बिजनेस नहीं करना है। आई तार अलफ की हुआ रेल का राही, माना परमात्मा की तार आई है, अब मुझे बिजनेस नहीं हुआ है होना है, अभी मुझे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। तो उसका पार्टनर पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, बोला दादा आपको क्या हुआ, मेरे से कुछ गलती हुई मेरी? बोला तुम्हारी कोई गलती नहीं हुई है। बोला नहीं पर ये क्या हुआ, ये सब क्या कर रहे हैं? बोला नहीं, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है, अब मेरे हिस्से में जो आता है मुझे दे दे। तो ऐसा करके पार्टनर को भी बोल दिया। ये सब विचार मंथन प्रक्रिया के कुछ समय के बाद ही 1937 दिवाली के दिन पिताश्री लेखराज जी, तब तो उनका नाम लेखराज जी ही था, उन्होंने अपनी तमाम स्थावर जंगम मिलकत का 8 बहनों के नाम पर ट्रस्ट बना करके जिम्मेवारी दे दी कि अभी आप संभालेंगे, और अपने पूरे परिवार सहित वो भी वहां ही रहने लगे। अब लेखराज दादाजी की इस प्रवृत्ति को देखते हुए और ये सत्संग का कारोबार आगे चलता हुआ देख करके उनके कई मित्र स्नेही जो बहुत क्लोज थे, वो भी कोई 5-6 परिवार वाले, ऐसे ही बाल बच्चों के सहित समर्पित हो गए। अब वो सब साथ में रहने लगे, गीता पढ़ने लगे, आपस में ध्यान करने लगे। अब यहां कैसे परमात्मा अपना कार्य करा रहा है, तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा के तन का परमात्मा ने कब से कब्जा कर लिया था मालूम है? कब से कब्जा कर लिया? जब वो ध्यान अवस्था में उन्होंने अनुभव किया, उनके द्वारा जो निकला ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, परमात्मा की प्रवेशता होने के बाद कुछ कार्य अपने आप होने लगा। कार्य करवाने वाले निराकार शिव पिता थे, तो फिर ध्यान होने लगा कि पिताश्री लेखराज दादा जी अपना गीता पढ़ते थे। अब गीता पढ़ते पढ़ते समझो उनकी नजर जिस पर पड़ गई, तो वो ध्यान में जा रहा है और उनको दिव्य साक्षात्कार होता है। जहां नजर टिक जाती वो ध्यान में चले जाते। फिर ध्यान में कोई राधे बनते, कोई कृष्ण अपने को अनुभव करते, और धीरे धीरे रास मंडल रचने लगे, सब दिव्य साक्षात्कार करने लगे। तो धीरे धीरे लोग खींच खींच के आने लगे, सैकड़ों से हजारों की संख्या में आने लगे। चलो भगवान, मुफ्त में भगवान है, तो बड़े छोटे बच्चे सब आने लगे। अब क्या हुआ, तो ऐसा जो सत्संग चल रहा था, एक दिन दादा लेखराज जी के मुख से ये वाणी निकली कि इस सत्संग के अंदर वो ही आ सकते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, जो 5 विकारों का दान देंगे, जो मीट मटर प्याज लहसुन आदि तामसिक चीज नहीं खाएंगे, जो रोज सत्संग में आएंगे और दिव्य गुणों वाला जीवन बनाएंगे, और अपने परिवार से लिखा के लाना होगा, चाहे बहन आती तो अपने पति से लिखा ले, अपने माता पिता से लिखा के ले आवे, वो ही ये सत्संग में आ सकते हैं। अब बताइए हजारों में से कितने बचेंगे? थोड़े ही बचेंगे ने, अगर आप सब यहां बैठे हैं। और ऐसा कहा जाए कि इस नियमों पर चलने वाले अपना जीवन इस सेवा में लगा दे तो कितने तैयार हो जाएंगे, कितने तैयार हो जाएंगे। तो वहां क्या हुआ, हजारों में से सैकड़ों में भी कुछ 350-450 जितने भाई बहने आते रहे, जो अपने रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स या हस्बैंड से चिट्ठी लिखा के आ सके तो वो आते रहे। और आते आते धीरे धीरे फिर उन्होंने ये संकल्प कर, मैं भी दादा लेखराज जी की तरह अपने जीवन को भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। तो मकान तो थे ही 5-6, तो फिर सभी ने मिलकर के एक हॉस्टल की जैसा हो गया। एक मकान में बहने कुमारियां रहती थी, क्योंकि परिवार सहित आए थे तो कुछ बच्चे भी थे, करीब 40-45 जैसे बच्चे थे, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का। तो फिर वहां पर बाबा ने एक बाल भवन बनाया, जिस बाल भवन में इनको आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी, पर थोड़ा थोड़ा आवश्यक इतना अक्षर ज्ञान भी दिया जाता था। तो एक भवन के अंदर बाल भवन बना जहां उनकी पढ़ाई होती थी, एक भवन के अंदर कुमारियों को रखा जाता था, एक में कुमारों को रखा जाता था, एक भवन में माताएं रहती थी, एक में भाई और एक में बाबा रहते थे। तो ऐसे पूरा कराची में, सिंध हैदराबाद में, कराची में 1937 के दिन से लेकर के ये यज्ञ की स्थापना हुई, और 14 साल तक वहां ये लोग रहे। और वहां कैंपस के अंदर ही इनों की सारी दिनचर्या बनी रहती थी। अब किसी भी संस्था में जहां लोग एक साथ रहते हैं, वहां पर व्यवस्था के हिसाब से क्या बनाना पड़ता है, डेली रूटीन बनाना पड़ता है, कितने बजे उठना है, कितने बजे प्रेयर करना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे प्रवचन में बैठना है। तो पूरी सारी दिनचर्या बन गई और उसी मुताबिक उनकी जीवन चलने शुरू हो गई। फिर 1947 में आप सबको मालूम है कि हमें स्वातंत्र मिला, उसके पहले काफी युद्ध हुआ, खूंखार लड़ाइयां हुई, सारे अपने वाले लोगों को चुन चुन करके कराची से निकाला गया, सब पहने कपड़े सभी को भागना पड़ा। ऐसे समय में भी हमारा ये जो यज्ञ था, तो वहां के गवर्नमेंट के लोगों ने आकर के कहा कि आप हमको छोड़ के नहीं जाना, आप खुदा के बंदे हो और आपके होने से हमारी रक्षा हो रही है। तो 1947 के पहले सभी भारतवासी तो आ गए, पर अपनी संस्था वहां थी। फिर 1950 में वहां से स्थान के आबू में पहुंचे, और आबू में किराया का एक मकान रख करके वहां पर एक्टिविटी शुरू की। फिर तो समय प्रमाण दो स्थान बदली भी करने पड़े, और अभी जो हमारा पांडव भवन है, जहां आपने नहीं देखा होगा तो देखने का दिन होगा लास्ट दिन शायद, तो वहां पर रहना शुरू किया 1950 में। यहां आबू पर्वत पर आए, और फिर तब से लेकर के ये एक्टिविटी पूरे भारत देश में फैलाने के लिए बाबा ने कुछ ग्रुप्स बनाए, दो तीन बहनें एक दो भाई, ऐसे ग्रुप्स बना करके भारत के बड़े बड़े शहरों में भेजा कि आप बच्चे जाओ और सभी को परमात्मा का संदेश दो कि हम परमात्मा बाप आए हुए हैं और हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। अब ये लोग तो वहां से निराश्रित के रूप में आए थे, सारे ही जो आए, और स्टीमर मार्ग से आए थे तो स्टीमर में जितना सामान ले आ सके इतना सामान ले आए, इसमें कोई भी कमाने वाला तो था ही नहीं, तो चलते चलते क्या होगा, सारा खर्च हो गया। अब ये बात मैं आपको इसलिए सुना रही हूं कि स्वयं भगवान को भी और भगवान के माध्यम ब्रह्मा को भी इस कलयुग के अंदर चैलेंजेस आती हैं। जिस चैलेंजेस को पास करके दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, तो एक दिन ऐसा कि 400-450 भोजन खाने वाले, लेकिन भंडारे में कुछ भी अनाज नहीं बचा था। बाबा ने तो अपना सब कुछ दे दिया, उसके बाद कभी है कि कैसे हैं, माताओं बहनों को सौंप दिया था। अब उस दिन जो संभालने वाली बहनें थी वो बाबा के सामने आई और बाबा को कहा केवल 8 आना बचा था, 450 लोग जहां रहने वाले खाने वाले वहां केवल 8 आना बचा था। आकर के बाबा को कहते, बाबा अब यही बचा है, आज सभी को खाना कैसे खिलाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे आज सभी बचो कि हमें आज 1 बजे तक भट्टी करनी है, तपस्या करनी है। भट्टी तपस्या माना कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन, घंटे घंटे मेडिटेशन में बैठे रहे, तपस्या करे, उसको भट्टी कहते। जैसे सोने को शुद्ध करने लिए आग में डालते हैं, सोने के लिए भट्टी, ईंट को पकाने के लिए आग में डालते हैं, तो उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये योग तपस्या भट्टी यहाँ होती है। तो आज भट्टी करनी है। तो अब बाबा ने बोला, तो बोल तो दिया पर संकल्प चलेगा ना कि अभी भट्टी करने से पैसा आएगा, अनाज आएगा, सबको खाना कैसे देंगे। सुबह 9 बजे वाली पोस्ट से कुछ ड्राफ्ट आए। अब जिन्हों के वो ये लोग जानते नहीं थे, पर ड्राफ्ट आए, टन रीति से पता नहीं सारा रेशन का ठेला आ गया, बहुत बड़ा ठेला आ गया। बाबा को पता चला, बाबा ने कहा बच्चों को दे दो और बोलो कि देखो ऑलमाइटी बाबा ने भेजा है, अभी सबके लिए भोजन बनाओ। तो सबके लिए भोजन बना। उसी दिन रात्रि क्लास में बाबा ने सभी बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारे कि बच्चे अभी हमें अपने को मेहनत करके, लोगों की सेवा करके, अपनी कमाई का हमें खाना है। ऐसा कह करके ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स को बड़े बड़े शहरों में भेजा कि अब वहां जा करके ये ईश्वरीय ज्ञान आप सभी को दो। अब तो बच्चों ने बाबा को कहा, बाबा टिकट के लिए पैसे चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे पैसे तो अपने पास कहाँ है, पर आप जब जाओ ना ट्रेन में, अगर आप शिव बाबा की याद में होंगे तो आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। लेकिन अगर शिव बाबा की याद भूल जाए और टिकट मांगे तो बोलना हम तो खुदा के बंदे हैं, खुदा दोस्त हैं, खुदा ही खिदमतगार पर जा रहे हैं, आप कहो तो बैठते हैं नहीं तो अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, फिर दूसरी ट्रेन में बैठ जाना। हाँ सुना, अब देखो ये साधारण बात थोड़ी थी। लेखराज दादा भी अपने जीवन में उस अवस्था में पहुंचे थे, उस जमाने के लाखों पति राजा रजवाड़ाओं में जिसका नाम था, उनके आगे ये कितनी बड़ी परीक्षाएं थी, क्योंकि भगवान भी उनके मुख से बोलता था लेकिन उसको भी तो अपने मुख से ही बोलना पड़ता था ने। और उस प्रकार से ग्रुप्स गए, बाबा से जब जा रहे थे ने तो बहने कहती थी कि हमने बाबा को कहा, बाबा आप हमें बंदरों की दुनिया में कहां भेजते हो, क्योंकि बाबा के साथ रह करके 14 साल के अंदर वो तो सभी एकदम फरिश्ते बन चुके थे। इन्हों के तपस्वी जीवन, वो सिंधी बहने और वो बाल खुला रखते थे कि जब तक हमारा यज्ञ स्थापन नहीं होगा तब तक हम चोटी नहीं बनाएंगे, और तपस्या में सागर किनारे पर जाके बैठे, धर्मशाला पर जाकर के बैठे, बाग बगीचे के आगे जाकर के बैठे। बाबा ने सफेद चद्दरें दी थी कि जहां जाओ सफेद चद्दर बिछा के बैठना, तपस्या कर, मुझे याद करना, मैं आप लोगों के साथ साथ हूं। तो जा तपस्या करते थे, लोग आके पूछते थे आप कौन हो, कहां से आए हो, वो कहते थे हम परमात्मा की संतान हैं, हम ऊपर से आए हैं। किस लिए आए हो, आप हमारे भाई बहनों को परमात्मा संदेश देने लिए। क्या संदेश है, संदेश जैसे सुनाना शुरू करे वो सामने वाले सुनते 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 वो ध्यान में चले जाए, उन्हों को साक्षात्कार हो जाए, उन्हों को परमात्मा के द्वारा कुछ संदेश मिल जाए। और किसी ने बहनों के लिए फ्लैट ऑफर किया, किसी ने धर्मशालाएं ऑफर की, किसी ने क्या, किसी ने क्या, सबके तरफ से सहयोग आता गया और आध्यात्मिक ज्ञान सुनने की रुचि लोगों की बढ़ती गई। और इसी प्रकार अलग अलग केंद्रों की स्थापना होती गई। आप यहां पर अपने बुक स्टॉल पर आपको ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी पर पुस्तक मिलेगी, आप अवश्य उसको पढ़ने, उसके एक या दो भाग है पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि व्यक्ति अपनी शक्तियों को किस पराकाष्ठा तक पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मुझे शॉर्ट में ही उस बात को कवर करना पड़ेगा, लेकिन आज पूरे भारत भर में हमारे 5,500 से 58,000 क्लासेस गीता पाठशालाएं चलती हैं। हमारे जैसी करीब 50,000 बहनें हैं जिन्होंने जीवन दिया, ऐसे युवा भाई हैं 20,000 जितने, और लाखों भाई बहन, कम से कम 12-13 लाख जितने भाई बहन तो ऐसे हैं जिन्हों की जीवन भले घर गृहस्थ में रहने वाले हैं फिर भी उन्हों की जीवन एक योगी जीवन है, फरिश्ते की जीवन है। तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को काम पर लगाने की एक यथार्थता हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखने मिल रही है। 93 ईयर्स, 18 जनवरी 1969 में आपने पुराना देह त्याग किया, लेकिन वो भी कैसे, शाम को प्रवचन करके अपने कमरे में आकर के बैठे और बस बैठे बैठे अपना थोड़ा हाथ यहां गया तो जो हमारी दादी प्रकाशमणि थी उस समय आबू में आए हुए थे, बाबा ने उनके हाथ में हाथ दिया, दृष्टि देते रहे। दादी जी अपने अनुभव में सुनाती है कि मुझे लगता है कि बाबा ने अपनी सारी शक्ति मुझे ट्रांसफर कर दी और बाद में वही संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ बनी जिनके द्वारा ये सारा कार्य आगे बढ़ा। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे आपने अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त पा। तो इस व्यक्ति एग्जांपल से हम अपनी शक्तियों को पराकाष्ठा तक बढ़ा सकते हैं, वो अंदाज लगा सकते हैं, और वो हमारे ही अलौकिक पिता हैं। हम सबके पिता हैं, पर पिता के पिता के पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो ब्रह्मा पिता हैं। तो शिव पिता हमारे पारलौकिक पिता हैं, ब्रह्मा पिता हमारे अलौकिक पिता हैं, और शरीर के पिता हमारे लौकिक पिता हैं। तो हम कितने बाप के बच्चे हुए? 3 पिता के हम बच्चे हैं। अब कितने भाग्यशाली हैं। आप सभी को मैं ये कहूंगी के कंठे पर आए हो, अपने आप को पूरा भरपूर करके जाना। अभी कोई सोच में न रह करके अपने जीवन को बनाने का एक सुंदर निर्णय यहां से लेकर के जाना। स्वयं भगवान ने आपको चुन करके, हाथ पकड़ करके अपने गोद में लाया है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो आप सभी भाग्यशाली आत्माओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है और धन्यवाद है।